नमस्कार, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से दूसरी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है निर्गमन। हम आशा करते हैं कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक लाभ मिलेगा। तो आइए, अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले आइए सुने ये मधुर गीत।
गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, जीवन अपना देकर हमको जीवन राह दिखाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई, शरण में उसने लेकर हमको पाप से मुक्ति दिलाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, उसकी महिमा उसकी भक्ति जीवन की है भलाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई, शीश नवाना उसके चरण में कितना है सुखदाई। यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, ओ यीशु राजा सबसे प्यारा हुआ है मेहरबान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलके प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान। भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, भजन करो सब उसके, वो है सबसे अधिक महान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, ओ गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान, गाते जाओ मिलकर प्यारे यीशु के गुणगान।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा कुशल पूर्वक होंगे और आज भी प्रभु के जीवित वचनों में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं फिर से आप सभी नए और पुराने श्रोताओं का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यह कार्यक्रम आपको अवश्य ही आत्मिक लाभ प्रदान करेगा। मित्रों, इससे पहले कि हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस वक्त जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए कि आप उनकी आत्मिक आंखों को, उनके हृदयों को, विचारों को, कानों को खोलें, ताकि प्रभु जब आपके वचन को सुनते हैं, निश्चित रूप से आपका जीवित वचन उनके हृदयों से बातचीत करने पाए। बहुत सारी बातें हैं जिसे हम नहीं समझ पाते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप उसे समझने के लिए हम में से हर एक को ज्ञान प्रदान करें। इस समय हम अपने आप को इस वचन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु प्रत्येक की सहायता करें। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने तंबू बनाने अर्थात पवित्र स्थान में किन किन वस्तुओं को रखना है इसके बारे में हमने विचार किया था, और हमने देखा कि संदूक किस लकड़ी से बनना चाहिए और उसके ऊपर ढकना और करूबों का होना, ये सारी बातें हमने देखी। आज हम पवित्र मेज के बारे में देखेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि पवित्र स्थान में सज्जा सामग्री की तीन वस्तुएं प्रमुख थी। पहला सोने की दीवट, दूसरा पवित्र मेज और तीसरा धूप वेदी अर्थात होम बलि की वेदी। पवित्र स्थान के भीतर ही आराधना स्थल भी था। स्वर्ण दीपाघर प्रभु यीशु का सबसे सुंदर सिद्ध चित्र है। पवित्र मेज भी उसी की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि वह जीवन की रोटी है। सुगंधी धूप वेदी भी प्रार्थना की उपमा है कि वर्तमान में प्रभु ही हमारा मध्यस्थ निवेदक है और उसी के द्वारा हम पिता से प्रार्थना करते हैं। मित्रों, पवित्र मेज पर सदैव 12 रोटी रखी रहती थी। जिस प्रकार से यह रोटियां सजाई जाती थी उसके अनेकों ढंग थे, परंतु प्रमुख बात यह थी कि ये इसराइल के 12 कुल का प्रतिनिधित्व करती थी। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी को समान स्थान देते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 25 अध्याय और उसके 23 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। मित्रों ध्यान दें, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। पवित्र मेज की ऊंचाई भी उतनी ही थी जितना वाचा के संदूक की ऊंचाई थी। हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन 25 उसके 24 पद में, उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना। यहाँ पर मेज के चारों ओर सोने का मुकुट अथवा सोने की बाड़ थी जो रोटियों को गिरने से बचाने के लिए थी। तब हम आगे पढ़ते हैं 25 अध्याय के 25 और 26 पद में लिखा है, और उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और एक पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। मित्रों पुनः ज्ञात रहे कि उसके चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी पटरी तथा सोने की एक बाड़, 4 कड़े मेज के चारों ओर की पायों पर भी थे और उसमें पिरोए डंडे जिनके बल पर मेज उठाई जाती थी। जब इसराइली लोग यात्रा करते थे उस समय और याजक गण इसे अपने कंधे पर उठाते थे। हम आगे पढ़ते हैं 25 अध्याय उसके 29 और 30 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने से बनवाना और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। मित्रों रोटी ख्रीस्त की एक उपमा है, अतः पवित्र मेज भी मसीह का एक नमूना है या मसीह की सुंदर तस्वीर भी है। पवित्र मेज अनेक बातें बताती है और यह आहार पुष्टि प्रबंध और आपूर्ति का भी संकेत देती है। यह उद्धार की मेज है और हमारे प्रभु ने मत्तयी सुसमाचार 22 अध्याय उसके 1 से 14 पद में इसके बारे में दृष्टांत दिया है, विवाह भोज का दृष्टांत। उसमें वो अतिथियों को आमंत्रित करते हैं, मेहमानों ने आने से इनकार कर दिया, तभी राजा का क्रोध भड़क उठा और उसने सबों को चौराहों पर, सड़कों पर भले बुरे लोगों को निमंत्रित किया, अर्थात उन्हें निमंत्रण भेजा कि वे आए और भोजन ग्रहण करें। इसी प्रकार आज भी यीशु द्वारा उद्धार का यह निमंत्रण संसार के चहु ओर सब लोगों को भेजा गया है। यह आहार पूर्ति की मेज है। सृष्टिकर्ता होकर परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलता और सभी जीवों और मनुष्यों का पेट भरता है। मित्रों चाहे आप पसंद करें अथवा नहीं, शारीरिक स्तर पर आप प्रतिदिन परमेश्वर की मेज से खाते हैं, तो भी कितने कम लोग इस सच्चाई को पहचान कर उसकी आशीषों के लिए उसे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ही हमें सब वस्तुएं उपलब्ध कराता है। मित्रों यह मेज प्रभु भोज के बारे में भी बताती है, जिसे प्रभु यीशु ने स्वयं क्रूस पर मृत्यु से पहले उसकी स्थापना की। यह विश्वासियों की मेज है। यीशु ख्रिस्त विश्वासियों के लिए आत्मिक भोजन प्रदान करते हैं। यह मेज इस तथ्य को उजागर करती है, और यह मेज जिसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी, यह बबूल की लकड़ी की बनी तथा दोनों ओर सोने से मढ़ी गई थी। बबूल की लकड़ी शुद्ध निर्दोष उसके मनुष्यत्व को प्रकट करती है। यह धरती की उपज होकर किसी भी रासायनिक पदार्थ से दूषित नहीं हुई। इसी प्रकार हमारे प्रभु की देह सांसारिक तत्वों से युक्त एक कुंवारी के गर्भ से उत्पन्न हुई। स्वर्ण उसके ईश्वरत्व को दर्शाता है। ये धरती से उत्पन्न नहीं होता, परंतु उससे बिल्कुल भिन्न है और अत्यंत कीमती और मूल्यवान भी। अपने ईश्वरत्व में ख्रीष्ट धरती का नहीं था, वह ईश्वर था, अतः संपूर्ण महिमा से पैदा हुआ। मित्रों, मेज पर गिनती की 12 रोटी रखी थी। रोटी तथा मेज एक ही बात को दर्शाती है। यही बात हम आज कहते हैं कि प्रभु की मेज। हम मेज की नहीं खाते, परंतु भोजन जो उस पर रखा है। धर्मशास्त्र में इस प्रकार लक्षणिक प्रयोग सामान्य है। मित्रों, प्रत्येक सप्त के दिन अर्थात विश्रामवार रोटी बदल दी जाती थी। इन रोटियों को पुरोहित परिवार के लोग अंगूर रस के साथ पवित्र स्थान में खाते थे। यह मेज यीशु ख्रीष्ट का चित्रण उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं करता जिस प्रकार मन्ना करता है, यद्यपि दोनों ही ख्रीष्ट के बारे में बताते हैं, परंतु यहाँ इसका संबंध इस प्रकार का नहीं है। मन्ना ख्रीष्ट को जीवन दाता बताता है और उसने स्वयं को स्वर्ग की रोटी कहा, जिसे हम यूहन्ना के सुसमाचार 6:32 पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। और कुछ समय के बाद ही यूहन्ना उसके 6:35 में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। मित्रों, अब मेज ख्रीष्ट के बारे में जीवन पुष्टि करने वाला को दर्शाती है। अनंत जीवन एक वरदान है, वह मन्ना है जो स्वर्ग से उतरा है। जो व्यक्ति मन्ना खाता है वह अनंत जीवन प्राप्त करता है। तो भी अनंत जीवन को बनाए रखने के लिए और बढ़ने में मदद तथा सामर्थ्य के लिए एक विशेष भोजन की आवश्यकता होती है। भेंट की रोटी जो मेज पर है ख्रीष्ट को उनके लिए विशेष भोजन बताती है, जो जीवन के मन्ना अर्थात रोटी में भाग ले चुके हैं। मित्रों, एक दूसरे उदाहरण में प्रभु यीशु ख्रीष्ट को इस प्रकार दर्शाया गया है, जिसे उपयोग में लाया गया है। भेंट रोटी गेहूं से बनती है और जिसे पीसा गया, अखमीरी बना रोटी बनाकर उसे सेका भी गया। लेवी व्यवस्था उसके 24:5 तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में एपा का 2/10 मैदा हो। तब हम प्रभु यीशु के बारे में भी पढ़ते हैं, वह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह दुख और पीड़ा की चक्की में पीसे गए। असहाय मानसिक पीड़ा के कारण यूहन्ना 12:27 में यीशु ने कहा, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी में पहुंचा हूं। और आगे हम यूहन्ना 12:31-32 में पाते हैं कि वह दुख पीड़ा एवं न्याय की अग्नि में से होकर गुजरा। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि इस पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कब्र में से निकलकर एक नए जीवन में प्रवेश किए, क्योंकि उसकी आत्मा कलुषित नहीं हुई। अब वह पुनरुत्थित जीवन में जीवित हैं। वह अब विश्वासियों के लिए भेंट की रोटी है जो अनंत जीवन को बनाए रखती है तथा उन्नति करती है। मसीहियों को जीवित ख्रीष्ट को खाना है। उसे परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान ख्रीष्ट को ठीक समझना है। उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। मित्र, एक पुरानी कहावत है कि जो कुछ व्यक्ति खाता है उसी के अनुसार बढ़ता है, और पोषाहार की एक पुस्तक जिसका शीर्षक है तुम जो खाते वही बनते। आजकल कठिनाई इस बात की है कि अधिकतर मसीही ख्रीष्ट यीशु को नहीं खाते। उसमें बढ़ने के लिए हमें उसका भोजन प्राप्त करना होगा। दूसरा क्रंथियों की पत्री 5:16 में पौलुस का कथन है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। मित्रों, अब हम मसीह के शरीर के अनुसार नहीं जानते, वह आज जैसा है वैसा ही उसे खाना है। वह जीवित यीशु ख्रीष्ट है और उसी पर दृष्टि लगाए हुए हमें भी विकसित होना है। अब हम आगे देखते हैं स्वर्ण दीपाधार अर्थात सोने की दीवट। साज सज्जा की वस्तुओं में अगली चीज सोने की दीवट है। अधिकतर अनुवादों में इसे समादान अर्थात बत्तीदान कहा गया है, परंतु वास्तव में यह रोशनी स्थान था। हम निर्गमन की पुस्तक 25:31-33 में पढ़ते हैं, लिखा है, फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवा कर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्प कोष गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने, और उसके अलंगों से 6 डालियां निकले, तीन डालियां तो दीवट की एक अलंग से और तीन डालियां उसकी दूसरी अलंग से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान तीन तीन पुष्प कोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई छह डालियों का यही आकार या रूप हो। मित्रों, पद 34 से 39 को लगातार पढ़ने से समझना कुछ कठिन सा प्रतीत होता है। पद 40 में हम इस प्रकार से पाते हैं, जहां पर लिखा है, और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है। मित्रों, दीवट पर रखा हुआ दीपदान निवास स्थान की साज सज्जा के समान में संभवतः ख्रिस्ट यीशु का सबसे सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। उसको स्वर्ण के समान शुद्ध बताकर उसके ईश्वरत्व की साक्षी और प्रमाणित किया गया है कि वह परमेश्वर है। प्रकाश में चलते ही सच्ची आराधना होती है। यह बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि भेंट की रोटी मेज पर के अध्ययन से हमें ज्ञात हुआ है कि जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के भोजन पर आश्रित रहना चाहिए। यदि आप चर्च जाते हैं और वहां केवल मनोरंजन होता है या किसी पुस्तक का परिचय मिलता है या कोई सामाजिक विषय पर चर्चा की जाती है या शहर के विकास पर संदेश दिया जाता है तो यह आराधना या इबादत नहीं है, यह तो केवल एक सभा है। आप परमेश्वर की आराधना मेज पर रखी हुई भेंट की रोटी को खाकर करते हैं। परमेश्वर की आराधना के क्रम में आपको प्रकाश अर्थात ज्योति में भी चलना आवश्यक है। प्रभु यीशु इस जगत की ज्योति हैं, जैसा कि पवित्र स्थान में रखे दीपदान से स्पष्ट है। यदि प्राकृतिक प्रकाश चाहिए तो तंबू के बाहर जाइए। यूहन्ना उसके एक अध्याय के 9 में लिखा है, यीशु ख्रीष्ट सच्ची ज्योति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आपको मालूम है कि कई लोग जो अपने शब्दों से दूसरों को परामर्श देते हैं, हमें बताया गया है कि दर्शन शास्त्र और व्यर्थ बातों से लोगों को मानवीय परंपराओं के आधार पर धोखा दिया जाता है। कुलुसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस प्रेरित के शब्दों पर ध्यान दें, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है पर मसीह के अनुसार नहीं। परंतु यीशु मसीह कोई दूसरे दार्शनिक नहीं है जिसने बिना ज्ञान शब्दों के अंधेरे में परामर्श दिया हो। वह तो परमेश्वर के पुत्र हैं जिसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। मित्रों, दीप दान या दीवट वास्तव में सोने का एक टुकड़ा था। इसको ठोक और पीट कर अत्यंत सुंदर आकार मिला था। उसके मध्य में एक पाया था। उस पाया से जुड़ी तीन डंडियां थी जो चारों ओर फैली थी। कुल संख्या 7 डंडी की थी। प्रत्येक शाखा अर्थात डाली में बादाम के फूल के समान तीन तीन पुष्प कोष, एक एक गांठ और एक एक फूल थे। सबसे ऊपर खुला हुआ बादाम का फूल फल जिस पर तेल सा भरा दीपदान रखा था। यह फूलता फलता बादाम लकड़ी का दिखता था परंतु पूर्ण शुद्ध सोने से बना था और हमें फूलती फलती हारून की छड़ी का स्मरण दिलाती है। जब हारून की राजकीय सेवा पर अंगुली उठी थी तब इसी फूलती फलती छड़ी ने ही उसकी राजकीय अधिकार को प्रमाणित भी किया। बादाम की छड़ी सूखी लकड़ी से फूल फल दोनों ही निकले। उसी प्रकार परमेश्वर के पुत्र ने मृतकों में से जीवित होकर स्वयं को स्थापित किया। पुनरुत्थान से मसीह यीशु पुत्र नहीं बने क्योंकि वे पहले से ही परमेश्वर की अनंत योजना में थे। पुनरुत्थान से केवल यह बात दृढ़ हुई कि हारून परमेश्वर द्वारा नियुक्त महायाजक थे और उसकी स्थिति बादाम की मृतक छड़ी के जीवित होने से सुदृढ़ हुई। मसीह यीशु के पुनर्जीवित होने से उसका याजक पद अर्थात पुरोहितपन स्थापित होता है। यीशु ख्रीस्त हमारा महायाजक हैं। उसने मनुष्य बनकर हमारे स्वभाव को ग्रहण किया। सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया परंतु निष्पाप निकला। परंतु उसके पुरोहित होने का आधार उसका ईश्वरत्व है। पुरोहित अर्थात याजक परमेश्वर के सामने मानव का प्रतिनिधित्व करता है और मसीह परमेश्वर होकर मानव बनकर इस पृथ्वी पर मनुष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वर्ग पर कोई है जो मुझे जानता और समझता है। वह मेरी मदद करने में समर्थ भी है। पुनरुत्थान ने उसे इस पुत्र घोषित किया है और उसके पुरोहित होने की पुष्टि भी की है। मित्रों, यह दिलचस्प बात है कि दीपाधार का कोई माप नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ईश्वरत्व का कोई माप नहीं होता है। मित्रों, आप उसके परमेश्वर के पुत्र होने को माप नहीं सकते। आप उसे समझ भी नहीं सकते। वह मानव के आलंकन से परे है तो भी वह सिद्ध मनुष्य था। उसका ईश्वरत्व एवं मनुष्यत्व कभी भी घुल मिल नहीं गया। यद्यपि लाजर की कब्र पर खड़े होकर यीशु रोया, पर पुकार कर कहा, लाजर निकल आ। मित्रों, पवित्र स्थान में दीपाधार प्रकाश फैलाता है। यह आराधना का स्थान था। ध्यान दें कि दीपाधार अन्य आने वाले प्रकाशित दीप को थामे हुए है। इसके विपरीत अनेक दीप उस दीपाधार की शोभा बढ़ा रहे हैं। दीप में तेल पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यीशु ख्रीस्ट ने पवित्र आत्मा के संबंध में कहा, जिसे हम यूहन्ना 14 उसके 26 पद में पाते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराएगा। मित्रों, जब आप और मैं साथ साथ वचन का अध्ययन करते हैं तो हम यीशु ख्रीस्ट के व्यक्तित्व को चाहो ओर से देखते हैं, और यह पवित्र आत्मा है जो मसीह की बातें लेकर उन्हें हमें दिखाता है। उसी प्रकार जैसे यह दीपाधार अनेक अन्य दीपदानों के साथ मिलकर उसकी सुंदरता में और चार चांद लगा देता है, और पवित्र आत्मा उसको परमेश्वर के पुत्र के समान हम पर प्रकट करता है। वह जो हमारी खातिर इस धरती पर आया और हमारे लिए स्वर्ग पर जीवित होकर निरंतर निवेदन करता है। मित्रों, यहाँ पर हमारा 25 अध्याय समाप्त होता है और अब हम 26 अध्याय से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, और इस अध्ययन में हम इन मुख्य विषयों पर विचार करेंगे। बिलाप वाले तंबू को ढकने के लिए चार पर्दे, कपड़े, बकरी के बाल, मेढ़ों की खाल और सुइसों की खाल, निवास स्थान के छोर और वाचा के संदूक पर का ढकना, इन सारे विषयों को हम देखेंगे। साथ में निवास स्थान अर्थात तंबू के अनेक पर्दे भी। पहला है, मूल निवास स्थान चार पर्दों से ढका था। पहला पर्दा कपड़े का था जो तंबू के उस भाग को ढांपे था जिसकी लंबाई 30 हाथ, चौड़ाई 10 हाथ और ऊंचाई 10 हाथ थी। यह कपड़ा पूरे तंबू को ढकता था, पर उसके छोर किसी छोर से भी जमीन को नहीं छूते थे। हम निर्गमन की पुस्तक उसके 26 अध्याय और उसके 1 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इनको बटी हुई सनी वाले और नीले वैजनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। कढ़ा हुआ ढकने वाला कपड़ा अति सुंदर ढंग से सजावट वाला था। हम 26 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी के बाल के 11 पर्दे बनवाना। मित्रों, ये पर्दे सभी साथ साथ जुड़े और सिले गए थे। और तब हम 26 उसके 8 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो, 11 पर्दे एक ही नाप के हों। एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ की थी, जिसका मतलब है कि वह तंबू को पूरी तरह से ढांके हुए था। वे आंकड़ों और कड़ों से विभूषित थे। तब हम आगे पढ़ते हैं निर्गमन 26 अध्याय के 14 पद में लिखा है, फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। मित्रों, ढकने की तीसरी वस्तु लाल रंग से रंगा मेढ़ों का चमड़ा तथा चौथा सुइसों की खालों का बना था, या दूसरे शब्दों में वे सब खालों के ही थे। मित्रों, महिलाएं चमड़े का कोट पहनते हैं, परंतु शायद तंबू ही पहले चीज है जिसको चमड़ा ओढ़ाया था। अब प्रत्येक ढकने के वस्तुओं का एक चिन्हित अर्थ भी है। पहला कपड़े का ढकना अति सुंदर ढंग से गूथा था। यह मिस्र देश का कपड़ा उस पर करूबों द्वारा सजावट की गई थी। इसको धरती का स्पर्श नहीं करना था। यह बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, और सच पूछे तो यीशु ख्रीस्त की सुंदरता को संसार नहीं देख पाया। वह अपने ही लोगों को संतोष प्रदान करता है। विश्वासियों के लिए यह अति आवश्यक है कि न केवल वे नियमित रूप से उस भोजन से भोजन प्राप्त करें, परंतु सदैव उसकी सुंदरता को निहारते भी रहें। भजन संहिता 17 उसके 8 में दाऊद का कथन है, मुझे अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। मित्रों, निवास स्थान अर्थात तंबू के ऊपरी भाग पर करूबों के पंखों का वर्णन है, परंतु उसके पंखों के नीचे हमारे लिए सुरक्षित और भला स्थान भी है, जहां हम छिपकर उसकी आराधना भी कर सकते हैं। वही सचमुच आराधना के योग्य है। मित्रों, दूसरा पर्दा बकरी के बालों का बना है और भूमि को छूता है। यह पर्दा ख्रीष्ट पापियों के योग्य है कि वो संकेत करता है। यह मसीह की मृत्यु की ओर इशारा करता है और यह संदेश संसार तक पहुंचाना है। इब्रानियों के पत्र 9 अध्याय उसके 26 में हम पढ़ते हैं, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। मित्रों, इस पद में शब्द संसार का एक बेहतर अनुवाद युग है। वह प्रकट हुआ, यही संदेश है जो जाना चाहिए। बकरी के बालों के पर्दे का यही संदेश है। तीसरा पर्दा लाल रंग के रंगे मेढ़े की खाल का है। इस पर्दे का संकेत प्रभु यीशु के तेज और ताकत से है तथा क्रूस पर बलिदान से है। हमारे लिए उसका बलिदान का पक्ष ही पर्दे का घटक है। और चौथा पर्दा सुइसों की खाल से बना था। जंगल अर्थात निर्जन देश में 40 वर्षों के भ्रमण के बाद भी समय और मौसम के मार खाकर भी वह बिगड़ा नहीं, परंतु जो कुछ भी भीतर में था उसकी सुरक्षा करता रहा। यह पर्दा लोगों के बीच ख्रीष्ट के चाल चलन की ओर इशारा करता है। जिस प्रकार अंदर की भाग है विश्वासी को उसके आंतरिक सुंदरता का बोध कराती है, उसी प्रकार यह चमड़े का ओढ़ना किसी सुंदरता को प्रकट नहीं करता है। यशायाह 53 अध्याय उसके 2 में मसीह के विषय में यह उद्धरण है। वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट कर निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता कि हम उसको चाहते। मित्रों, बाहर से उसके कोई सुंदरता नहीं दिख पड़ती थी। हम उसे चाहें परंतु उसकी सुंदरता देखने के लिए हमें भीतर से अवलोकन करना पड़ेगा। हम जो कुछ उसमें पाते या देखते हैं संसार को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। मित्रों, यह सच है कि आज भी हमारे जीवन में हम कई बार उस सुंदरता को नहीं देख पाते हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यदि हम प्रभु के निकटता में आएंगे तो निश्चय ही हम उस सच्चाई को समझ और देख पाएंगे। मित्रों, यहां पर आज हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित रूप से इस अध्ययन के द्वारा से आपने आज प्रभु यीशु मसीह के उन रूपों को देख लिया है कि वो किस प्रकार से हमारे मध्य में रहे और उसने हमारे लिए किस प्रकार से अपने आप को बलिदान किया ताकि उसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकें। इस समय फिर से एक बार हम सब अपने आप को प्रभु के हाथ में देते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय ही आप इसी तरह प्रभु के वचन को सुनते रहेंगे और अपने जीवन में उन महान आशीषों को आने देंगे। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊं, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आँखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, नीचे धरती ऊपर आसमां बना। गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गा।